अगर हम रीकैप के पॉइंट्स खोल कर देख लें तो इसमें हमारे पास चंद चीज़ें मौजूद हैं, आप नोट कर सकें तो कर लीजिए। पहली चीज़ तो आप देखें कि सूरत मोमिनून पढ़ी हमने इस बारे में। ये छोटे छोटे बातें अगर आप नोट्स में ख़ुद लिखेंगे ना, यकीन करें कि आपका समप आ जाएगा, खुलासा है पूरे पारे का कि कैसे इंसान अपने आप को इन आयतों के पढ़ने के बाद सेल्फ सफिशिएंट समझ लेता है और अल्लाह सुबहाना ताला उस बंदे के लिए उन चीज़ों को कितना आसान कर देते हैं। तो सबसे पहले सूरत मोमिनून हमने पढ़ी, कद अफलहल मोमिनून, ईमान आ जाएगा तो बाकी कामयाबी की चीज़ें भी ज़िंदगी में लानी और इसका होना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस पारे को हमने चूँकि ज़िना की रोशनी में देखा तो ईमान के बाद नमाज और नमाज के बाद लग्व से इज्तनाब, क्योंकि लग्वियात जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत चीज़ें ले आती हैं। लग्व चीज़ें देखते हैं सुनते हैं फिर बात बिगड़ जाती है। 10 सिफ़ात का जिक्र था, आप कह लीजिए कि जन्नत में ले जाने वाली 10 सिफ़ात है। फलाह के मौजू से बात शुरू होती है, फिर वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ फलाह से है वो ईमान से शुरू होती हैं। ईमान के बग़ैर की हुई नेकियाँ जड़ कटे दरख्त की तरह होती हैं, और ईमान क्या है? मार्फत का नाम है। फिर आप देखिए कि इन 10 आयतों में तकरीबन यानी 11 आयतें बनती हैं, 2 दफ़ा नमाज का जिक्र है, 1 दफ़ा खुशू है तो एक जगह पे नमाज की हिफाजत है। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये सारी चीज़ें आपके मेरे लिए एक अमल का नुक्ता भी ज़ाहिर करती हैं, और वो क्या है? कामयाबी नमाज के साथ है। अदरवाइज़ नमाज नहीं है तो कामयाबी नहीं है। आपका मेरा अपने लिए ये पूरा यकीन होना चाहिए, अगर आपके बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जितनी मर्ज़ी आप कोशिशें कर लें, आप उसको दुनिया की किसी भी जगह भेज दीजिए, वो नाकाम आएगा अगर उसने 5 वक्त की नमाज को अपने लिए एक मेयार नहीं बना लिया कामयाब का। फिर आप देखते हैं कि आगे खुशू की बात है, आखिर में नमाज की हिफाजत की बात है, और नमाज के अंदर मतलूब 2 ही दर्जे हैं, अंदर खुशू हो और बाहर फिक्र हो नमाजों के वक्त की। खुशू क्या है? नमाज के अंदर दिल की कैफियत, और खुदू क्या होता है? ज़ाहिर की कैफियत, अल्लाह की खशियत का एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और खशियत होती है वो चीज़ जो बंदे और उसके गुनाहों के बीच में हायल हो जाती है। आप सिर्फ़ 1 हफ़्ता अपने आप को लग्व से शौरी तौर पर दूर करें। आपको मैं एक प्रैक्टिकल देती हूँ, पूरे 1 हफ़्ता कोई ऐसा मैगज़ीन ना देखें जिसमें लग्वियात हैं, टीवी, फिल्में और जो कुछ भी है, कोई लग्व चीज़ ना देखें। बेकार के हंगामे, बेकार चीज़ें, बेकार महफिलें, तफरीक के नाम पर करके देखें, आपके अंदर कुरान को जज़्ब करने की कैफियत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। आप कह सकते हैं कि लग्व से एराज़ ही इंसान के अंदर खुशबू पैदा करता है। लग्व बेकार और फजूल चीज़ है, इसका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखरत में ना दीन में। खुशू से पढ़ी हुई नमाज इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करती है। कई वाक़यात आप सहाबा कराम के सुनते हैं, तीर लगा हुआ है और नमाज की हालत में निकाल दिया और होश ही नहीं है। अल्लाह हमारी नमाजें भी ऐसी कर दे। आयत नंबर 12 से 16 में उन तमाम चीज़ों का तذکرہ है जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं। आयत 15 और 16 से ये पता चलता है कि इंसान की 4 लफ्ज़ों की कहानी है। इंसान मर के फिर मट्टी बन जाता है। फिर आयत 17 और 18 में आसमानों की 7 तहों की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला जब चाहे बारिशों के बंद खोल दे और जब चाहे खुश्क साली करके कहत में मुब्तला कर दे। इसी तरह 19 से 21 तक अल्लाह ने अपनी नेमतों को बयान किया जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है। आयत 23 से अगली आयात में 2 किस्म के इंसानों का तذکرہ, एक वो जो हिदायत की तरफ बुलाते हैं और दूसरे वो जो इनकी बात सुनकर जवाब नहीं देते। आयत 24 काफिरों के इल्ज़ामात का तذکرہ जो वो नबियों पर लगाते थे। आयत 29 हज़रत नूह की दुआ है, ए अल्लाह तू मुझे बरकत दे और इस जगह पर उतार जो तेरी नज़र में बेहतर है। फिर आयत 38-39 से पता चलता है कि आज अगर आपके बारे में कोई शक करे, आपके पैगाम और आपकी बात को गलत कहे, तो उस वक्त कहिए कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। आयत 51 में तैयब रिस्क और अमल सालेह का गठजोड़ है, यानी रिस्क तैयब होता जाएगा, अमल भी सालेह होते जाएंगे। और आयत 57 से 61 में उन लोगों का जिक्र है जो गुनाह करके नहीं नेकियां करके भी डरते हैं, हदीस हम सुन चुके हैं। आयत 63 गौरतलब है, एक गहरे कुएं से मिसाल दी गई है जिससे निकलना मुश्किल है। गलत काम ऐसे ही बंदे को गहराइयों में गिरा देते हैं। आयत 67 में अरबों की आदत बयान की गई है। आयत 70 में हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है कि इंसानों की अक्सरियत को हक अच्छा नहीं लगता। आयत 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान सुनते वक्त तुम्हें बोरियत क्यों होती है। आयत 78 से पता चलता है कि सोचने का काम दिमाग से नहीं दिल से होता है। और आयत 93 और 94 में अल्लाह के नबी को दुआ सिखाई जा रही है कि मुशरिकों पर अजाब आने वाला है तो आप पहले से दुआएं मांग लें। और 99 से सूरत के आखिर तक यानी सूरत मोमिनून ये आयात अहम है, इसमें अफहसिब तुम से मकसद हयात भी है। सूरत नूर शुरू हुई बहुत ही अछूता अंदाज है, मुआशरती ज़िंदगी के बहुत से पहलू खोले गए जो बेहयाई और गंदगी में मुलव्वस मुआशरे के फितने से एक इंसान को निकाल कर अल्लाह की रहनुमाई में ले आते हैं। पूरी सूरत का उन्वान क्या है, मुआशरे को जिना से पाक करना है। दूसरी बात यह कि जब एक इंसान इस शहवत के जज्बे की तकमील करता है तो वो लज्जत इसको मिलती है। पहली चीज़, अल्लाह ने यह ख्वाहिश क्यों रखी, नस्ल इंसानी की बका है। हर इंसान के अंदर ख्वाहिश या लस्ट होती है, इसकी दो वजह हैं कि एक तो यह कि नस्ल इंसानी की बका हो और एक यह कि आखरत की तड़प हो। फिर इस तरह सूरह नूर की आयत नंबर 2 में जिना करने वाली औरत और मर्द के बारे में बताया गया। आयत 3 में लड़कों की शादी से पहले तरबियत करने की बात है। चंद आयतों में आगे तोहमत की बात है। फिर आयत 6 से 10 में शोहर और बीवी के दरमियान के मामलात को सुलझाने की बात है। आयत 11 से अगली आयत हज़रत आयशा पर तोहमत का किस्सा है। आप देखिए कि ये बार बार जब एक ही पारे का जिक्र होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फिर जहन खुलता है। हमने देखा आयत नंबर 19 में दुखी दिल के साथ अगर हम पढ़ें इस आयत को कि नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशी अल्फाहिशत, तो आज के दौर में अमूमन मीडिया का यही रूप दिखता है कि जहां बुराई की नशरो इशात की जाती है। और हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि हमें अब ये बात सुननी भी बुरी लगती है। फिर इसके बाद आयत 22 अबू बकर सिद्दीक के बारे में। आयत 27 अगली आयत में सद्दे ज़राए हैं कि वो तरीके जिसके ज़रिए से ज़िना की रोकथाम की जाए। आयत 35 से अगली आयत में अल्लाह ताला की पहचान और कुफर की बातें हैं। और आयत 37 मुहासबे का नुक्ता, क्या मेरी शॉपिंग की वजह से नमाजें तो नहीं जाती। कितने लोग हैं इतने महव हो जाते हैं शॉपिंग में कि उनको याद ही नहीं रहता, बल्कि बाहर तो पता नहीं रात हो चुकी है, वो तो अपने ही हाल में मगन है। तो याद रखिए, हर वो चीज़ जिसको लेते हुए नमाज चली गई आपके लिए बरकत का ज़रिया नहीं रहेगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत आयशा पे जो बोहतान लगा था ये मुसलमानों ही की कारस्तानी थी। मुहासबे का नुक्ता, क्या मैं हर सुनी सुनाई बात को आगे तो नहीं बढ़ाती, क्या मैं बग़ैर सोचे समझे तो नहीं बोलती। फिर आयत 40 में तो कुफर की बात है, 35 में नूर की बात थी। आयत 41 से कायनात के अंदर अल्लाह की बात मानने की बात है। 47 में हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है, क्या मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो सुनकर कहता है कि मान लूँगी फिर बाद में नहीं मानती। और आयत 51 पढ़ते वक्त दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करें जो कहें समेना व अतवाना। आयत 53 से दूसरा किरदार शुरू होता है जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और ये आयत आईना है हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह के लिए इसका काम करने का दावा करता है और नियत रखता है, लेकिन बाद में फिर उसकी नियतें बदल जाती हैं। आयत 54 में अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को बेनियाज कर दिया कि आप अपना काम करते जाएं, इनकी गलत चीज़ों की जिम्मेदारी आप पर नहीं आएगी। और आयत 55 से आगे वादे हैं अल्लाह के कि जो लोग अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे अल्लाह ताला बिलआखिर दुनिया में गलबा उन्हीं को देगा। और सूरत नूर की आखिरी आयात 58-59 उसमें हमने मुहासबा करना था कि अपने बच्चों के सामने निजी गुफ्तगू तो हम नहीं करते, यानी माहरम रिश्तों के साथ भी एक पर्दा और एक लिहाज होना चाहिए। फिर आप देखिए कि कुछ ख़ास बातें सूरत फुरकान के नाते से। पहली ही आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान इसलिए नाजिल किया गया कि लोगों को हिदायत दे। और आयत 11 से अगली आयत में उन लोगों का इंजाम है जो कुफर करते हैं और क़यामत के दिन को झुठलाते हैं। پھر صرف فرقان کی آیت 15-16 پرہیزگاروں سے جنت کا وعدہ، آیت 20 میں زندگی کا گہرا اصول ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آپ سے الجھے گا، اتصبرون صبر کریں گی، کوئی آپ کی غیبت کرے گا، کوئی آپ کو دکھ دے گا، کرنے دیجئے، اپنا محاسبہ کر لیں کہ اللہ مجھے کبھی دوسروں کے لیے مسئلہ نہ بنانا۔ اب لیتے ہیں جیمز اس پارے کی قیمتی باتیں۔ نمبر ایک، لغف، ہر بے مقصد چیز جس سے دین دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو صرف وقت گزاری اور تفلیق کے لیے۔ خود سے پوچھئے کیا میری زندگی لغویات میں تو نہیں گزر رہی۔ پھر نمبر دو، نماز کے ساتھ لغویات ہوں تو نماز مطلوب درجے کی نہیں ہوتی اور نماز میں خشوع نہیں رہتا۔ قرآن سے زندہ تعلق ہو نہ کہ صرف وظیفوں کا۔ آج بہت سارے لوگ قرآن کی ایک ایک آیت کئی کئی سو بار پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس پہ ایک بار عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنا کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہٹا کر دوسروں کو آپ کی جگہ پہ لے آئیں گے۔ اس کو پلے سے باندھ لیں، کوئی کرسی کبھی خالی نہیں رہی، ہر بندہ اپنے لیے یہ بات یاد رکھ لے۔ پھر اگلی بات ہے تکبر نہیں کرنا۔ اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ جب اچھا کھائیں گے تو اچھے عمل کریں گے اور برا کھائیں گے تو برے عمل ہوں گے۔ تقویٰ کیا ہے؟ نیکی کر کے بھی ڈرنا کہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ زنا اور بدکاری کی بہت بڑی وجہ سامرن تہجرون، یعنی قصہ گوئی، افسانے، ڈرامے، فلمیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ پھر نیکسٹ، حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بولیے، اسلام انسان کے نسب کی زبردستی، گندے لڑکوں کا نکاح پاک لڑکیوں سے، بدگمانی سے، عورتیں چست جسم دکھاتے ہوئے کپڑے نہ پہنے، عورت میں کشش فتنے کا، علم کے تیل سے مومن کے دل کا ایمان، نفاق بندے کو پردے اور حجاب کے کھلے احکام۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو سدے ذرائع زنا، یعنی کن کن رستوں سے زنا کو بند کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے گھروں میں مرد اور عورت کا، مرد اور عورت کو تنہا، جو ان میریڈ ہیں ان کے گھر کے اندر محرم غیر محرم کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج کا اہم نقطہ، معاشرے کو زنا سے پاک کریں۔ چلیے دعائیں مل کے پڑھیے، سب ساتھ ہی ساتھ پڑھنا لگیں۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب انصرنی بما کذبون۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 18۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمدللہ، اللہ ایک سے ایک پارہ پورا کرواتا جا رہا ہے۔ یہ دعا کیجئے کہ ہمارے عمل بھی پختہ ہونے لگیں۔